जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज च नरंजन। यशोदानंदन ब्रज च नरंजन। यशोदानंदन ब्रज च नरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे, नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद।
प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के
स्कंद नौवा अध्याय छठा श्लोक संख्या नंबर 9 से लेकर 26 तक। तो इनका शीर्षक है सौब्र्य मुनि का पतन। तो कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। भार्यसस्तेना निर्विन्नः ऋषयः असय कृपाल कृपालव इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिम ते सुसमाहिताः। भार्यसस्तेन निर्विन्ना भार्यसस्तेन निर्विन्ना ऋषयोस्य कृपालवः ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्यसस्तेन निर्विन्ना ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्यसस्तेन निर्विन्ना ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। पढ़िए।
Thank you.
माता जी से। शब्दार्थ इस प्रकार है, भार्या सतेन, 100 पत्नियों के साथ, निर्विन्ना अत्यंत खिन्न, ऋषिया ऋषिगण, असय उस पर, कृपालव अत्यंत कृपालु, इष्टिम अनुष्ठान, स्म भूतकाल में, वर्तयान चक्र संपन्न करने लगा, इंद्रिम इंद्र यज्ञ, ते वे सभी, सुसमाहिता अत्यंत सावधान। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि युवानस्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु सभी अत्यंत खिन्न थी, तथापि जंगल में ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अथवा वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सकाए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, यद्यपि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है ग्रस्त जीवन से पूर्ण विरक्त। यद्यपि युवानस्व गृहस्थ जीवन में विरक्त हो चुका था, किंतु उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण खिन्न रहती थी। होम ज्ञानेन तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयम् ददापि स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथांबितम तम सजीवम साधवैतम साध्वदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहां पर युवानस्व के पुत्र मंदाता फिर उनके पश्चात सौंदर्यमणि की कथा यहां से शुरुआत होगी। तो इस शीर्षक है, इस अध्याय का शीर्षक है सौंदर्यमणि का पतन। तो उसके पहले उनके पूरे इतिहास के विषय में चर्चा किया गया है। तो 9 से लेकर 26 तक ऐसे कई श्लोक हैं जिनको हम सुनेंगे, केवल श्रवण करेंगे कि इसके पीछे इसमें प्रभुपाद अनुवाद किस प्रकार वर्णन करते हैं और इसका इतिहास क्या है। तो बड़ा लंबा अनुवाद है। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुनाभि विहितं नृपा देशं निहाश्रम्य आस्य सुत्तं त्यक्त्वा विदितं रुषा सत्तु विप्रेण संवादं ज्ञान पवैक्न्य समाचरण त्यक्त्वा काले वरम योगी सतेनावाप यत्परम पित्रै उपत्रय विहत्या विक्षुक्षी पृथ्वीम इमाम शाशत ईशा हरिम यज्ञै शाशत इति विश्रुणता पुरंजह तस्य सुतान इंद्रवह इत्रीहिता ककुस्थ इति चापि उक्ता श्रुणु नामनी कर्म भी कृतांत अस्ति समारो देवानां सह दंद्वै पारशिंग्रहो वित्रो वीरो दवैर दैत्य पराजित वचनात् देव देवस्य विष्णुर विश्वात्म प्रभु वहान्त्वे वृत्तस्तस्य भूवेन्द्रिय महावृत्तस् भूवेन्द्रिय महावृषा ससंधो धनुर्दिव्यम् आध्य विक्षिक्षा चित्थान सुत्यमान तम आरूय जुयुक्स्थ कुक्ति स्थित तेजसापी तो विष्णु पुरंस्य महात्मन प्रतियाम दिष्टि दैत्यानाम नियारुन्नात त्रिदशै पूर्वम तैस तस्य चाभूत प्रधानम तुमूलाम लोम हर्षम यमाह बलैर अन्यत दैत्याम अभियु ययूर मृथै तस्यय पादी विमुक्ष विमुखाम युगान युगांतांगिम इवोलपम विश्रज्य दुद्रुवुर दैत्य हन्यमाना स्वयं आलयम जीत्वा परम धनम सर्वम सस्त्रीखम वज्रपाने प्रत्याचित स राजऋषिर इति नामीभिर हार्यत पुरंजस्य पुत्रभूत अन्येस्य तद सुतः पृथु विश्वाग्निथिस तथा चंद्रो युवानस्व तू तत्सुतु। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा मह की। श्रुत्वस्य तत्सुतो येन श्राविष्टि निरमये पुरी बृहतास्य तु श्रवासीति तत् कुवाला कुवालवायाक्ष्व। यह प्रियार्थम उत्तंकस्य धुंधु नाम सुरम बली सुतानाम एक विमस्यत्य सही सहसीर आह्यंत वृतः। दुंधु मार इति कायतास्तत सुतास्ते च जझालु धंदूर मुखाग्नि सर्वे त्रय एवास्यतैस् दृष्धास्व कपिलस्व च भात्रास्व इति भारत। दृष्टास्व पुत्र हरयस्व निमुक्षास्तत सुता स्मृता बहुलास्व निमुक्षस् निकुम्बस्य कृशोवो तस्य सेनाजित युवानस्व भाततस्य सो नापत्यो वनम गत। अब इनका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद श्ल प्रभुपाद जी के द्वारा। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र विक्षुक्षी ने क्या किया तो वे अत्यंत क्रोध हुए। इस प्रकार उन्होंने विक्षुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी क्योंकि उसने विधान का उल्लंघन किया था। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पिता के चले जाने पर विश्वक्षी अपने देश लौट आया और पृथ्वी लोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वह राजा बना। बाद में विश्वक्षी शाशत नाम से विख्यात हुआ। शाशत का पुत्र पुरंजय जो इंद्रवाहक के रूप में और कभी कभी कुकुत्स्व के नाम से विख्यात है। अब मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न नाम किस तरह प्राप्त किया। पूर्व काल में देवता तथा असुरों के मध्य घमसाम युद्ध हुआ। पराजित होकर देवता ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया तब वे असुरों को पराजित कर सके, अथवा यह वीर पुरंजय कहलाता है, अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया है। पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्भवश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा साल बैल बन गया। कवचन से भली भांति सुरक्षित होकर और युद्ध करने की इच्छा से पुरंजय ने अपने दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किया और देवताओं द्वारा आध्यात्मिक प्रशंसित होकर वह बैल इंद्र और सवार हुआ था उसके ढीले पर बैठ गया। इस प्रकार वो कुकुस्त्व कहलाया। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजय बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्रवाह कहलाया। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। असुरों तथा पुरंजय के मध्य धंधोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। जितने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते, वे सभी उसकी तीरों से यमराज के घर भेज दिए जाते। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए वे असुर जो अपनी सेना के मारे जाने के बचे थे तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलय अग्नि के समान थी। शत्रु के जीतने के बाद संत राजा पुरंजय के वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु से वह पुरंजय नामक से विख्यात हुआ। इस तरह पुरंजय अपने विविध कार्यकलापों का कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुरंजय का पुत्र अन्नेना कहलाया, अन्नेना का पुत्र पृथु तथा पृथु का पुत्र विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ, और चंद्र का पुत्र युवनाश्व था। युवनाश का पुत्र श्रावस्थ था, जिसने श्रावस्थी नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्थ का पुत्र बृहस्व था, और उसका पुत्र कुवलयाश्व था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। उत्थंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवलाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। यह महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवलाश्व धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुख से निकालने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्र के नाम हैं द्रुताश्व, कपिलाश्व तथा भृताश्व। द्रुताश्व के हर्ष्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश का पुत्र कुशाश्व, और कुशाश्व का पुत्र सेनजीत हुआ। सेनजीत का पुत्र युवानस्व था। युवानस्व के कोई संतान नहीं थी, इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वह जंगल चला गया। और यह है आज का अनुवाद। यद्यपि युवानस्व अपनी 100 पत्नी सहित जंगल में चला गया, किंतु सभी अत्यंत खिन्न थी, तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अथवा वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। इसका तात्पर्य बहुत छोटा है तो एक बार फिर देख लेते हैं। यद्यपि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि युवानस्म गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका था, किंतु उसकी पत्नियां कोई संतान न होने पर वे खिन्न रहती थी। तो यहां से श्लोक नंबर 9 से लेकर ये 26 तक, इनमें इक्ष्वाकु के परंपरा में, इक्ष्वाकु के कुल में जितने लोग बड़े बड़े राजागण जन्म लिए उनके विषय में, जो अति विख्यात है उसके विषय में यहां पर संक्षेप में कहा गया है। तो पहले तो ये कहा गया कि किस प्रकार विकुक्षी ने जो यज्ञ सामग्री के लिए जितने भी जानवरों को जो इकट्ठा किए थे यज्ञ में, यज्ञ हवन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसमें से एक प्राणी को जो खरगोश जो था शशा उसको खा लिया, इसलिए वो पूरा यज्ञ सामग्री दूषित हो गया। और आगे वर्णन आता है क्योंकि उन्होंने शशा को खाया इसलिए उनका नाम पड़ा शाशत, इस तरह वो विख्यात हुए विकुक्षी। मगर विकुक्षी को जब ये विकुक्षी की ये क्रियाओं को जब वशिष्ठ मुनि ने इक्ष्वाकु को जब बताए तो इक्ष्वाकु बड़े क्रोधित हो गए, और बड़े क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्र को अपने देश से तिरस्कृत कर दिया और उसे निकाल दिया गया। और इस प्रकार इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ग्रहण कर वो जंगल चले गए और तपस्या किए, और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय पर उन्होंने अपने जीवन को सफलता प्राप्त किया। जब उन्होंने अपने वापस भगवत धाम में जब लौट गए, तब उसी समय विकुक्षी वापस आते हैं अपने उस पिता के राज्य कारोबार को संभालने के लिए, और फिर से वो अपना राज शासन संभालते हैं। और इस तरह उनके जो पुत्र थे उनका नाम था पुरंजय। पुरंजय का बड़ा बहुत बड़ा उन्होंने अपने समय पर उन्होंने बड़ा कार्य किए, और उस कार्य के विषय में बताया जाता है कि किस प्रकार जितने भी देवतागण थे उन लोगों को असुरों को मारना था, मगर असुरों को मारने के लिए उनके पास कोई शक्ति पर्याप्त न होने के कारण उन लोगों ने पुरंजय से निवेदन किया कि आप थोड़ा सहयोग करो। तो पुरंजय ने एक शर्त रखा, और शर्त क्या था, मैं युद्ध करूंगा एक ही शर्त पर, अगर इंद्र मेरा वाहन बनता है तो। तो इंद्र तो बड़ा स्वर्ग का राजा, तो वो बड़े गर्वित तो होकर ऐसे विचार करने लगे कि मुझे वाहन बना रहा है, ये कदाचित नहीं होगा। और इंद्र ने तो साफ इनकार कर दिया। और जब भगवान विष्णु तक एक खबर पहुंचाया गया तब विष्णु ने इंद्र को कहा और कोई रास्ता नहीं है, तो इंद्र को बड़े विष्णु के आदेश का पालन करते हुए इंद्र ने पुरंजय का वाहन बन गए, और ऐसे धुआधार युद्ध किया पुरंजय उनका। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रकार के कार्य किए जिसके कारण उनका अलग अलग नाम पड़ा, पुरंजय तस्य सुत इंद्रवाह इति ऋषा। पुरंजय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जो असुरों का जो पुर जो था, जो कि सिटी वो जो नगर उसको उसको एक शब्द में कहा जाता है पुर, तो उसको विजेता प्राप्त करने के कारण उनका नाम पड़ा पुरंजय, और उन्होंने इंद्र को लौटा दिया वो सारे सामग्री के साथ इंद्र को लौटा दिया। और दूसरा उनका नाम पड़ा इंद्रवाहा। इंद्रवाहा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया, और तीसरा नाम पड़ा उनका ककुस्थ। ककुस्थ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पुरंजय बैल के ऊपर बैठे, बैल के पीठ पर, इसलिए उनका एक और नाम पड़ा ककुस्थ। ये इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और इस तरह उन्होंने युद्ध किया कि वर्णन आता है कि कोई भी इसके विषय में, इस युद्ध के विषय में अगर चर्चा को सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो कोई उनके समक्ष आता था, जितने भी असुरगण, वो सारे असुरगण को पुरंजय अपने बाणों की बौछार से सबको यम के आले भेज देते थे। और ऐसे उन्होंने युद्ध किया कि बाकी बचे कुचे जितने थे असुरगण सब डर कर भाग गए। हालांकि ये क्षत्रियों का लक्षण नहीं है, मगर यहाँ पर जितने भी बाकी जितने असुर थे सब डर गए। और डर कर भाग कर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वो डर कर, यहाँ पर तो लिखा गया कि घर भाग गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वो सब पाताल लोक भाग गए। और इस तरह पुरंजय जिन्होंने देवता को प्रसन्न किया और उनके वापस जितनी भी सामग्री जो थी वो वापस लौटा दी, और इंद्र की पत्नी के सहित उन्होंने सब कुछ लौटा दिया। और फिर उसके पश्चात का वर्णन आता है संतानों का, और किस प्रकार एक के बाद एक करके संतान के विषय में चर्चा आती है, और जो कि हमने क्रमानुसार एक के बाद एक करके श्रवण किए। और जो यहाँ पर जो वर्णन आता है यवनाश्व को 100 पत्नी थी मगर एक भी संतान नहीं दिया, और एक भी संतान प्राप्त न होने के कारण यवनाश्व और उनकी सारी पत्नी बड़े हताश होकर जंगल निकल पड़े। अब इससे ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार वो अपने ग्रस्त आश्रम से वो अब रिटायरमेंट ले लिए, यानी कि जब कोई इस प्रकार वो ग्रस्त आश्रम से जब कंटाल गए तब व्यक्ति वानप्रस्थ ले लेता है। और इस तरह उन्होंने कंटाल कर परेशान होकर वो वहां से निकल पड़े। मगर तत्पर भी यहां पर प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, लेकिन तत्पर भी ऐसे समय पर भी वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने के बाद भी उनके अंदर ग्रस्त आश्रम की कुछ आकांक्षा बची थी, और इसलिए उनका मुख जो था खिन्न था। केवल उनका नहीं, उनके सारे 100 पत्नियों का जो चेहरा था वो खिन्न खिन्न था, और जिसकी ये दशा को देखकर बाकी पुरोहित लोग ने उनके ऊपर करुणा बरसाए, और उस ऋषियों ने उनके ऊपर करुणा बरसाने के लिए वो समझ गए कि हाँ यवनाश्व को संतान की आवश्यकता है। तो इसलिए उन लोगों ने एक यज्ञ हवन किया, और जिस यज्ञ हवन से पुत्र प्राप्त हो ऐसे उन्होंने यज्ञ किया, इसका वर्णन यहां पर आता है। तो यहां पर जो यज्ञ के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता है उसमें कोई बुरा नहीं है, मगर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकारने के बाद भी उनके अंदर ग्रस्त जीवन की आकांक्षा बनी हुई है तो उसके लिए वो बाधा है, यह आध्यात्मिक जीवन के लिए रुकावट है। इसीलिए बताया गया है कि कोई अगर कितना भी अपने स्थिति को बदल देगा मगर जो उनके जीवन में जो उनके अंदर गुणों का जो प्रभाव है वो तो उस पर पड़ेगा ही। इसीलिए जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर रहकर उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहिए। जैसे पुराणों में जिस प्रकार वर्णन आता है कि इसी प्रकार अर्जुन ने जब देखा उनके समक्ष सारे उनके सगे संबंधी खड़े हैं तो अर्जुन बड़ा हताश हो गया, और निराश होकर उन्होंने निर्णय लिया कि बस मैं अब जंगल चला जाऊंगा, वन पर आपका ध्यान करूंगा और दर दर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करूंगा। और इस प्रकार कहकर कृष्ण को कहकर वो निकल पड़े, मगर कृष्ण की बात को न सुना
और जब जंगल गए तो जंगलों में जाकर वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करते थे। एक समय की बात थी कि वहां पर एक उनके साथ ही एक और एक था जो भिक्षा मांगता था, बड़ा कमजोर व्यक्ति था, और दोनों जन ने भिक्षा मांगकर लाए। उसी समय वहां पर एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति आ गया उस वन के अंदर, और ये जो कमजोर व्यक्ति था उसको कहने लगा, जितना भी भिक्षा मांगा है सब मुझे दो। ये तो अर्जुन देख रहा है ये सारे क्रियाओं को देख रहा है, और ये कहने लगा मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा तो बड़े छीना छपटी से उनसे छीन लिया, और जैसे छीन लिया तो अर्जुन ने देखकर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। तो अर्जुन ने कहा ये तुम नाइंसाफी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ये इस प्रकार ठीक नहीं है, एक कमजोर व्यक्ति पर तुम इस प्रकार के कार्य कर रहे हो। तो इन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम भी भिक्षा मांग के लाए हो इसलिए तुम भी मुझे दो। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मैं धनुर्धर अर्जुन हूं। हाँ अर्जुन होगा अपने जमाने में, लेकिन यहां पर तुम भिक्षुक हो, तुम्हें अपना हिस्सा देना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं दूंगा। नहीं देंगे तो युद्ध करना होगा। तो बोले ठीक है, अर्जुन भी उतर गया, वो भी उतर गया मैदान में। पीछे से किसी ने हाथ थपथपाया तो देखा तो कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना युद्ध करना होगा, अगर रणभूमि में नहीं तो जंगल में आके करना होगा। तो उसी प्रकार ग्रस्त आश्रम को भले ही छोड़कर चले भी जाते हैं, लेकिन हृदय के अंदर ग्रस्त आश्रम का भावना बना हुआ है, तो भले ही व्यक्ति किसी भी स्थान पर चले जाए लेकिन वो आकांक्षा या वो जो विचार या वो जो कार्य उनसे वो छूट नहीं सकता, जब तक वो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार अपने जीवन को व्यापन नहीं करता। और यहां पर युवाश्वान जो था वो सोचे कि मैं अपने स्थिति को बदलकर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, मगर उसमें भी उनके बीच में एक बहुत बड़ा रुकावट था, और वो था पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा। तो जो आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति को बड़े धैर्य पूर्वक क्रमानुसार इसमें प्रगति का उन्हें इंतजार करना चाहिए, तो वो धैर्य पूर्वक उसे सारे कार्यों को आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए। जैसे रामायण में वर्णन आता है विश्वामित्र मुनि की स्थिति। विश्वामित्र मुनि गए थे वशिष्ठ मुनि के पास पूरे राजाओं के साथ, और उस समय अब ये जो उदाहरण है इस उदाहरण से आप समझने का यह प्रयास करिए कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि कैसे कैसे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हुए कैसे कैसे अड़चनों को झेलते हुए आगे बढ़े। तो विश्वामित्र मुनि जब गए वशिष्ठ मुनि के पास, तब वशिष्ठ मुनि ने उनको बड़ा फीस्ट खिलाया, केवल अकेले ने पूरे सेनाओं के साथ। तो वशिष्ठ मुनि ने जब खिलाया तो ये विचार में पड़ गए विश्वामित्र मुनि कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, ये साधु जंगल में अकेला है, कोई इनके साथ में नहीं है, निठल्ला है, सब कुछ कुछ ना होने के बाद भी ये सारे कार्य को कैसे कर रहा है इतनी अच्छी तरह। तब पता लगा उनके पास एक कामधेनु गाय है, और वो कामधेनु गाय जो कि भरपूर जो कुछ इच्छा करे जो कुछ कामना करे भरपूर रूप में मात्राओं में प्रदान करती है। तब विश्वामित्र मुनि समझ गए कि जीवन में कुछ करना है तो इसी को उठाना है। अब विश्वामित्र मुनि ने अब उस कामधेनु गाय को चुराने के लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि को तो पहला निवेदन किया, तो वशिष्ठ मुनि ने तो मना कर दिया, और जब मना किया तो युद्ध करने लग गया। अब जब युद्ध करने लगे तो अब विश्वामित्र मुनि उनके सारे सेना तो टूट पड़े, मगर वशिष्ठ मुनि के पास था कामधेनु गाय जिससे जितना मनता उतनी सेनाओं की भौचार आने लगी। अब सारे सेना सब आकर विश्वामित्र मुनि के सहित सबको परास्त कर दिया। अब सभी लोग हार कर लौट गए, मगर विश्वामित्र मुनि ने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। उन्होंने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी को प्रसन्न करकर शिव जी से उन्होंने छत्र बल प्राप्त किया, और छत्र बल प्राप्त कर कर वो फिर गए वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध करने। अब वशिष्ठ मुनि तो ब्राह्मण थे, अब छत्र बल ब्राह्मण दंड के सामने कैसे चल सकता है, और छत्र दंड जो ब्राह्मण दंड के सामने परास्त हो गया। अब फिर विश्वामित्र मुनि परेशान हो गया, फिर गए तपस्या करने। अब फिर कई वर्ष तक तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब विश्वामित्र मुनि राजा से बन गए राज ऋषि। अब राज ऋषि का पदवी दिया ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र मुनि को। अब उसी समय यहां पर त्रिशंकु आया, त्रिशंकु गया था पहले वशिष्ठ मुनि के पास और कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऐसे तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, और उन्होंने उनको जब नकार दिया तो बड़ा निराश होकर वशिष्ठ मुनि के छोड़कर वो गए वापस विश्वामित्र मुनि के पास, और विश्वामित्र मुनि को कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, क्योंकि त्रिशंकु को पता था कि दोनों के बीच में राजनीतिक झगड़ा चल रहा है, इसलिए उन्होंने उनका नाम लेकर इनके क्रोध को बढ़ा कर अपनी आकांक्षा पूरी कर रहा है। तो इन्होंने कहा मुझे मना कर रहा है, जबकि उन्होंने यह भी कह दिया तुम चांडाल बन जाओ तो आप कुछ कर सकते हो। बोला हाँ क्यों नहीं, वो नहीं किया मैं करके दिखाऊंगा। अब उन्होंने अपनी शक्ति लगाया, जिस शक्ति से उन्होंने उनको स्वर्ग भेज रहे हैं, अब वो उसकी शक्ति के प्रभाव से त्रिशंकु हवे में उड़ते उड़ते स्वर्ग जा रहा है, और इंद्र को पता लग गया कोई बिना विषा का अंदर एंट्री मार रहा है स्वर्ग में। अब इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया, अब इंद्र बड़े क्रोधित होकर उन्होंने भी अपना वज्र चलाया, जिस वज्र से वो त्रिशंकु बीच में अटक गया। अब त्रिशंकु ऊपर भी नहीं जा पा रहा, नीचे भी नहीं जा पा रहा, और बीच में अटका हुआ है। अब त्रिशंकु सोच रहा था पहले तो जमीन मेरे पैरों के नीचे थी, अभी वो भी नसीब नहीं है, कर क्या रहे हो। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि ने देखा कि इंद्र नहीं मानने वाला है, तो कोई बात नहीं, विश्वामित्र मुनि ने अपनी जो साधना जो शक्ति जो की थी वो सारे शक्ति को उन्होंने नया स्वर्ग बनाने में लगा दिया, और नया स्वर्ग बनाकर वहां पर बिठा दिया। अब इस बार विश्वामित्र मुनि की सारी शक्ति खत्म हो गई, अब विश्वामित्र मुनि की सारी शक्ति खत्म हो गई, फिर से उन्होंने तपस्या किया, 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी पुनः प्रसन्न हो गए, अब राज ऋषि से उनको ऋषि का पदवी दिया, बोला कि तुम ऋषि के पदवी में रहो। अब उन्होंने उसी समय इंद्र ने देखा कि इसकी तपस्या बढ़ती जा रही है, तो इसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा। अब मेनका के झुनकार की आवाज सुनते ही, जो कि विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तक तपस्या किया आंख बंद करके, केवल कुछ झुनकार की आवाज सुनाई पड़ा, तो टूट गया उनकी तपस्या। अब 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी जब झुनकार की आवाज सुना तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मंदिर का घंटी बज रहा है, उसमें भी वो अपनी तपस्या से भंग हो गया। इतना तपस्या के बाद मेनका के झुनकार की आवाज सुनकर वो अपने स्तर से गिर पड़े, तब वो पछताने लगे, हाय हाय क्या हो गया। फिर उन्होंने तपस्या किया, अब जब पुनः उन्होंने तपस्या किया, जिस तपस्या से ब्रह्मा जी और प्रसन्न हो गए, अब वो ऋषि से महर्षि बन गए। अब महर्षि का पदवी जब दिया, अब फिर दोबारा इंद्र ने उससे बढ़कर अप्सरा को भेजा, और वो थी रंभा। अब फिर से आवाज सुनाई पड़ने लगा, अब विश्वामित्र मुनि को पुनः आवाज सुनाई पड़ा। विश्वामित्र मुनि समझ गए कि ये नालायक इंद्र का ही काम है, तो बड़ा क्रोधित हो गया, और इतना क्रोधित हो गया कि उन्होंने अपने क्रोध भरी दृष्टि से रंभा को जला दिया। अब विश्वामित्र मुनि फिर से पछताने लगे, ओहो क्या कर दिया, पहला मैं गिरा काम के कारण, दूसरी बार गिरा क्रोध के कारण, अब मेरा पूरा तपस्या खत्म हो गया। अब पुनः उन्होंने तपस्या किया, भूखे रहकर प्यासे रहकर, कई दिन तक उन्होंने भूखा और प्यासा का तपस्या को संपन्न किए और अंतिम समय पर जब पारण का टाइम आ रहा था उसी समय इंद्र ने एक भूखे का वेश धारण करके भिखारी का वेश धारण करके उनके समक्ष आ गया और कहने लगा मुझे भूख लगा मुझे दो। अब विश्वामित्र मुनि ने वो भी उनको अर्पण कर दिया और जैसे ही अर्पण कर दिया ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। और इस प्रकार वो विश्वामित्र मुनि जो क्षत्रिय से वो ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे और तब उसके पश्चात उनको प्रभु रामचंद्र जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह विश्वामित्र मुनि ने अपने जीवन में सफलता को क्रमा अनुसार प्राप्त किया। हालांकि वो इतने वर्ष तक तपस्या के बाद भी उनके मन के अंदर जो आकांक्षा थी वो वैसी बनी रही। इसलिए गौर कृष्ण प्रभु एक उदाहरण दिए थे कि नौका जो होता है पानी में रहता है तो तब तक ठीक है, लेकिन पानी अगर नौका के अंदर आ गया तब समस्या है। और यहां पर युवाश्वान की स्थिति इसी प्रकार देखी जाती है। हालांकि उन्होंने वानप्रस्थ स्थिति को भी प्राप्त करने के बाद भी उनके अंदर मन के अंदर यह आकांक्षा थी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसी प्रकार हम आगे कथा सुनेंगे सौब्र्य मुनि की, जो कि सौब्र्य मुनि ने इतने वर्ष तक जल के भीतर तपस्या की, लेकिन जल के भीतर तपस्या करने के बाद भी यमुनार अंतर जले मग्न तप्य परम तप ऐसे दिव्य तपस्या कर रहे थे। दृष्ट्वा मैथुन मीन राजस्य, उन्होंने केवल दो मच्छी को संगति में जब उन्होंने देखा उसी समय सौब्र मुनि के अंदर विवाह करने की इच्छा होगी। और इस तरह सौभर्य मुनि भी अपने तपस्या से गिर पड़े। तो इस तरह यहां पर जो वर्णन किया गया है जो युवास्वान की स्थिति वो इसी प्रकार है कि व्यक्ति को जब आध्यात्मिक मार्ग में जब प्रगति करना है तो उसे क्रमानुसार प्रगति करना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जब दर्शन कर लिया तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये उन्होंने तय कर लिया कि बस मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ जाऊंगा। और ऐसे सोचकर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और कहा मुझे भी आपका हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइंट करना है। तो महाप्रभु कहने लगे क्रमे क्रमे पाइलो भव सिंधु पुल गृहे हैला भरतूर भव सिंधु पुल। वो कहने लगे कि क्रम क्रम पाइलो भव सिंदूर पुल, जो कि ये जो भौतिक संसार है इस संसार की तुलना की गई है समुन्दर के साथ, इस समुन्दर को अगर पार करना है तो क्रमानुसार उसे तैरना है। अब किसी को समुन्दर पार करना है तो क्या करना पड़ता है, एक ही क्रिया को बार बार करना पड़ता है और वही क्रिया बार बार करते करते वो समुन्दर को लांघता है। ऐसे नहीं कि अब एक किलोमीटर अगर तैर लिया तो सोचिए अब मैं अलग स्टाइल से तैरूंगा, नहीं, सेम एक्टिविटी। इसी प्रकार एक ही मंत्र जो क्रमानुसार रोजाना निरंतर उसे जप करना है और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, न हैया भरतूर। इस प्रकार वो बड़े आसानी से लांग सकता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को शिक्षाओं के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण, क्योंकि श्लोक ऐसा था और कल ही मुझे पता लगा शास्त्र स्वरूप प्रभु का क्लास था तो मुझे इमरजेंसी में क्लास देना पड़ा, तो कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो क्षमा करिएगा। कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। यस हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम जप करते तो हमारे अंदर की आकांक्षा जो है वो खत्म नहीं होगी क्या? हाँ, निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हमें ऐसा संकीर्तन यज्ञ प्राप्त हुआ है जिससे व्यक्ति बड़े आसानी से इस भव सागर को पार कर सकता है, केवल उसके अंदर एक ही ये चाहिए, दो वस्तु चाहिए जो कि रूप गोस्वामी अपने एक मर गया, वो एक मेंढक उसके अंदर मर गया, दूसरा मेंढक उसी टोप से बाहर निकल गया, ये कैसे संभव है? क्योंकि वो जो मेंढक जो था, जो मरा हुआ मेंढक, उसने अपना उत्साह छोड़ दिया, लेकिन जो दूसरा मेंढक था उसने उत्साह नहीं छोड़ा, वो मारता गया हाथ पैर और मारता गया और मारता गया, वो जो दूध जो था वो दही में बदल गया, और दूध दही में बदलकर वो इतना गाढ़ हो गया कि उस पर चढ़कर वो बाहर आ गया। इसी प्रकार जो भव सागर जो है, इस भव सागर को पार करना है तो उसमें व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना है, निरंतर कृष्ण नाम लैब पाए मोर संग, और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण को देते हैं। वो व्यक्ति जो निरंतर भगवान का नाम जप करेगा और निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के संगति को प्राप्त करेगा। हाँ, इसलिए विश्वामित्र मुनि ऋषि से महर्षि, फिर ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि के बाद उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। तब तक विश्वामित्र मुनि भगवान के बिना आश्रय को ग्रहण कर वो प्रयास कर रहे थे, तो जब उन्हें राम का आश्रय प्राप्त हुआ तब वो उनके सारे हृदय की जो कलमश थे, जो सारे वस्तुओं को नियंत्रण करने की जो भावना थी, खत्म हो गई। इसलिए रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब रावण ने सीता को अपहरण करके जब लाया था, उसी समय रावण बड़ा चिंतित था, तो कुंभकर्ण ने पूछा, रावण क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों है? तो रावण कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं जब भी अपने प्रस्ताव को सीता जी के पास लेकर जाता हूं, सीता जी मेरे प्रस्ताव को ही ठुकरा देती है। तो कुंभकर्ण कहने लगे, रावण तुम्हारे पास तो बहुत सारी कलाएं हैं, क्यों नहीं तुम राम का रूप धारण करके सीता के पास चले जाओ, तो सीता तुम्हारे प्रस्ताव को सुन लेगी। तो रावण कहने लगा, रे मूर्ख कुंभकर्ण, मैंने सब कर लिया लेकिन सब फेल हो चुका है। तो बोले, अच्छा वो कैसे? तो कहने लगे, जब भी मुझे किसी का रूप धारण करना पड़ता है तो पहले मुझे उसके नाम का जप करना पड़ता है। तो जब मुझे राम का रूप लेना है तो मुझे राम 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 बोलना पड़ता है, और जब मैं राम 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 जब बोलता हूं तो सीता जी मुझे मैया की नजर आती है, तो मैं अपना प्रस्ताव क्या रखूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्लोक प्रभुपाद की।